मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 2 फरवरी 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, शुक्रवार को मैं आपको कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दिया करता हूं, तो आज भी कुछ सूचनाएं हैं जो हर शुक्रवार की तरह ही है। और सूचनाएं ये हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, आप जानते हैं, लेकिन क्लिपिंग्स आपको कल एज इट इज मिलेंगी, जैसी कि अभी तक मिलती रही हैं। और साथ ही हम लोग कल आप लोगों के लिए कुछ अतिरिक्त भार प्रोवाइड करते हैं, अतिरिक्त बोझ आप लोगों को देते हैं। पढ़ने के लिए आपको 4 आर्टिकल्स मिलते हैं, 2 योजना के, 2 कुरुक्षेत्र के, इनमें से 2 हिंदी के होते हैं और 2 इंग्लिश के होते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत स्टूडेंट्स मेल से पूछते भी हैं कि देखिए, योजना में बहुत से आर्टिकल्स छपते हैं, कुरुक्षेत्र में भी बहुत से आर्टिकल्स छपते हैं, उनमें जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विस की दृष्टि से जो आपके लिए सबसे उपयोगी हो सकते हैं, वे आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सच पूछे तो मुझे ऐसा लगता है मोटे तौर पर कि जो आर्टिकल्स आपको योजना और कुरुक्षेत्र के दिए जाते हैं, यदि आप उनको ठीक से पढ़ लेते हैं, अपनी जरूरत की चीजें उनमें से नोट कर लेते हैं, तो आपका काम फिर चल जाएगा। लेकिन यदि आप पत्रिका आपके पास है और आप उसमें से और पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम, देखिए उसमें कोई नुकसान तो होना नहीं है। लेकिन यदि आपके पास समय कम है या पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे यह लगता है कि ये 4 आर्टिकल्स जो हैं आपके लिए सफिशियंट होंगे, तो आप अपने ढंग से इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। मित्रों, जो हमारे आप सब प्रिय श्रोता हैं, उनके लिए मैं वीकली क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता हूं जो मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है। वो क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि आप सब उस पर प्रैक्टिस करें और तैयारी करके प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से तैयारी करके। इस बारे में मेरे पास कुछ ऐसे सुझाव भी आए कि सर आप उन्हीं प्रश्नों को दिया करें जो करंट अफेयर्स से हों, खासकर जो एक सप्ताह में जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं में से हों, तो हमारे लिए मटेरियल जुटाना आसान हो जाएगा। मित्रों, मैं आपकी आसानी और आपकी कठिनाई के हिसाब से तो क्वेश्चंस नहीं दूंगा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं वो दूंगा जो आपके लिए जरूरी है। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि प्लीज अगर आप सही में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी सरलता और कठिनता वाले रास्ते के बारे में मत सोचिए, जो करना है वो करना है, जहां चलना है वहां चलना है, चाहे वो रास्ता कांटों से भरा हुआ हो या गुलाब से भरा हुआ हो, वहां आपकी च्वाइस नहीं है, राइट। तो यहां भी मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा और साथ ही हमारे जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ सूचनाएं थी। अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर और आज सच पूछिए तो महत्वपूर्ण तो 2 न्यूज है। सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बजट की खबर है, उसे मैं मुख्य विषय के तहत लूंगा। लेकिन पहले मैं एक खबर पर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा, ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, प्री के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन एक कंटेंट की दृष्टि से। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पिछले साल इस पर प्रश्न भी पूछा गया है और अभी फिर से राष्ट्रपति जी ने अभी अपने संबोधन में कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए, इस पर बेहतर हो कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में सहमति बनाए चाहिए। उन्होंने नहीं कहा कि हो तो अच्छा है, एक साथ सभी चुनाव, यानी कि लोकसभा और राज्य, आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, राज्यसभा के तो होते रहते हैं। अब आप देखिए कि इसको लेकर के बहस छिड़ रही है और बहुत लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, ढेर सारे लोग अपने अपने ढंग से तर्क दे रहे हैं। मैंने भी इस पर आपको बहुत से करंट कंटेंट में मटेरियल प्रोवाइड किया है और साथ ही साथ अखबारों की क्लिपिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करता रहा हूं और डेली ऑडियो में भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। कल जो एक चुनाव हुए थे, खासकर राजस्थान के और वेस्ट बंगाल के, उनके परिणाम आए। आपको मालूम है कि राजस्थान में जो चुनाव, स्पेशली मैं राजस्थान की बात ले रहा हूं, राजस्थान में जो चुनाव हुए उसमें 2 चुनाव संसद के थे और 1 चुनाव विधानसभा का था, राइट। आपको इसको याद नहीं करना है, इसका उपयोग आप कैसे करेंगे मैं इसकी बात बता रहा हूं। चुनाव के परिणाम आए और ये 3 सीट कांग्रेस ने जीती, ठीक है, चलिए कोई भी पार्टी जीत जाएगी, तो इसका अब हमारे इससे संबंध क्या है आप देखिए। वहां सत्ता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, राइट। तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहां उपचुनाव में जीत कौन रही? कांग्रेस जीत रही है जो अपोजिशन में है। अब इसका विश्लेषण किस तरीके से किया जा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, इसी को हम कहते हैं पॉलिटी। तो कहा यह जा रहा है कि चूंकि इन तीनों से कांग्रेस पार्टी जीती है, या यूं कह लीजिए कि सत्ताधारी पार्टी पराजित हुई है, तो यह एक प्रकार से जो राज्य की जनता है उसका वर्तमान सरकार के प्रति व्यक्त किया गया अविश्वास है। तो दोस्तों लॉजिकली ये गलत भी नहीं है, लेकिन लॉजिकली ये पूरी तरह सही भी नहीं है, क्योंकि जब सरकार बनी थी तब भी ऐसा नहीं कि 100% सीट बीजेपी को मिली है, तब भी कुछ ना कुछ सीट्स कांग्रेस को मिली है, दूसरी पार्टी को भी मिली होंगी। लेकिन समीक्षा व्याख्या इस तरीके से होती भी है, तो ये इलॉजिकल भी नहीं है अगर कहा जाए तो। इसका मतलब है कि सरकार के प्रति लोगों के मन में कुछ शिकायतें हैं। तो अब आप देखिए कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इस तरीके से जो बीच बीच में चुनाव होते हैं, नो डाउट कि इसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लगना पड़ता है, आचार संहिताओं के कारण उस क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं वो रुक जाते हैं, ये सारे संकट आते हैं। लेकिन इस तरह के जो परिणाम आते हैं बीच बीच में जो चुनाव होते हैं, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, यहां केंद्र सरकार को भी, उन दोनों को अकाउंटेबल बनाते हैं, मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, उन्हें अपने कार्य नीतियों के बारे में सोचने के लिए बाध्य करते हैं। बट नेचुरल है कि वहां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इस बारे में सोचेगी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सच में हम जनता का विश्वास खो रहे हैं, जनता हमसे नाराज है, तो अपना वो विश्लेषण करेगी सरकार, और अपना जब विश्लेषण करेगी और जहां उसको पकड़ में आएगा वहां खुद को करेक्ट करने की वो कोशिश भी करेगी, करते ही हैं। तो इस दृष्टि से एक बहुत बड़ा पॉइंट ये होता है कि नहीं, चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं उसी तरह से होते रहना चाहिए। तो इसलिए इसमें इस घटना को मैंने लिया है मित्रों, लेकिन ये प्री एग्जाम में उस तरह से पूछे जाने वाली बात नहीं है, ये केवल कंटेंट के रूप में, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल इस बात का होता है कि जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो कितने लेटेस्ट है, इसका मित्रों बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान रखिए, है ना। तो लेटेस्ट इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपके आपकी स्मृतियों में होनी चाहिए। मित्रों अब मैं आता हूं बजट के ऊपर। देखिए आज के सारे अखबार बजट से रंगे हुए हैं, और होना ही है, बजट कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, छोटी मोटी बात नहीं होती। अब सवाल हमारे सामने जो खड़ा होता है, या यूं कह लीजिए कि जो हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि अगर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं तो इतने पेज के अखबार में से मैं अपने लिए क्या क्या छांटूं। आर्थिक सिद्धांतों से आप देखिए कि ढका हुआ है पूरा का पूरा अखबार, भरा हुआ है, इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी से भरा हुआ है, आंकड़ों से भरा हुआ है, और जब ये सब है तो विश्लेषण से भरा हुआ है, और जो बजट है वो केवल एक ही सेक्टर के लिए तो है नहीं, देश के संपूर्ण क्षेत्रों के लिए बजट है, जिसमें डिफेंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, सोशल वेलफेयर भी है, क्या नहीं है, बजट तो सबके लिए है। और यही सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती है, और इसमें आप जितने सिद्धस्त हो जाते हैं आप उतना ही सफलता की गारंटी अपने लिए सुनिश्चित कर लेते हैं। तो मित्रों मैं उस बात पर तो नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी सी आपको तथ्य बताऊंगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज आप लोगों से करने जा रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, कर दीजिए, करने तो नहीं जा रहा हूं, वो ये कि ये सब ऐसे अवसर होते हैं जब आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। देखिए इकोनॉमिक्स की अच्छी तैयारी करनी चाहिए के लिए आपके पास किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, दूसरी भी इकोनॉमिक्स की किताबें हैं, और अच्छी किताबें हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, पढ़ते ही हैं। लेकिन उसके साथ एडिशनल क्या है, जो रियल तैयारी होती है वो रियल तैयारी होती है इसी तरह के अवसरों पर। अब अखबारों में आपके सामने पूरा का पूरा अर्थशास्त्र देश का रखा हुआ है, मतलब उस रूप में पूरा अर्थशास्त्र नहीं है कि आप इसे किताब ही मान ले, लेकिन आपके पास पूरा का पूरा सिनेरियो है। अब उन सिनेरियो को आप रटिए मत, केवल पढ़िए भी मत, बल्कि समझने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन कीजिए, जो पिछले 2-3 लाइफ मैनेजमेंट में मैं लगातार आप लोगों से बताता आ रहा हूं, आप लोगों से कहता आ रहा हूं। जैसे वैल्यू एडिशन की जो मैं बात कर रहा हूं, तो उसको इस रूप में आप समझिए, जैसे सरकार अभी 2 सबसे बड़े स्टेप लेकर आई है इस बजट में, मुझे लगता है पहला कि जो कृषि उत्पाद हैं उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसमें लागत का डेढ़ गुना करने जा रही है, लागत का डेढ़ गुना, राइट, कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए। अब आपको सोचना चाहिए, पढ़िए मत, पढ़कर के तो आप समझ भी जाएंगे और रट भी लेंगे, ध्यान भी होगा। अब आपको चाहिए ये कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, इस पर आप अपनी तरफ से विचार करें, पहली बात। दूसरी बात कि अगर सरकार ने ऐसा कर दिया है, राइट, तो क्या सरकार इसको इंप्लीमेंट कर पाएगी, उसके सामने कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अभी भी जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य रख रखा है, किसानों को वो कीमत नहीं मिल पा रही है। जो व्यापारी हैं वो उन्हें इतनी कीमत भी देने को तैयार नहीं है। तो अगर किसान अपना सामान, अपना उत्पाद व्यापारियों से नहीं बेच पा रहा है, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो खुद खरीदे? तो ये जो समस्याएं हैं किसानों की, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इस पर आप अपनी तरफ से सोचिए, आपको सोचना ही चाहिए। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। जो थर्ड पॉइंट होगा, वो थर्ड पॉइंट ये होगा मित्रों कि ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि डेढ़ गुना उनका प्रॉफिट हो गया, उनकी लागत का डेढ़ गुना, और उनकी खरीद बिक्री भी होने लगी, किसान अपना जो उत्पाद है वो अपनी लागत से डेढ़ गुना मूल्य पर, यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस रेट पर बेच रहे हैं, व्यवस्था हो गई। तो अब इसका पूरी की पूरी हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, किसानों पर क्या इंपैक्ट होगा, रूरल इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होगा, मिडिल क्लास पर क्या इंपैक्ट होगा, पूरे के पूरे देश पर क्या इंपैक्ट होगा, उद्योगों पर क्या इंपैक्ट होगा। अब ये कुछ मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं, जब तक हमारे दिमाग में पॉइंट्स नहीं होते हैं, पॉइंट्स को मैं कभी कभी कसौटियां कहता हूं, ये वो कसौटियां हैं जिन पर आप अपने किसी भी विचार को, किसी भी घटना को कसते हैं, जांचते परखते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप इन पॉइंट्स के आधार पर अब सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का उत्पाद बिकना शुरू हो गया तो क्या होगा। तब मुझे लगता है कि आप सही मायने में इकोनॉमी की तैयारी कर पाएंगे। अब मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप इकोनॉमी की तैयारी कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि सही मायने में तभी आप अपने आप को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एक सही प्रत्याशी के रूप में तैयारी भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बजट में सिविल सर्विस के लिहाज से मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, वो ये है, एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी योजना जो आई है, आयुष योजना अखबारों में इसके लिए लिखा गया है, देखिए अब एस्टेब्लिश हो जाएगा नाम में क्या है। इसमें इसके तहत सरकार ने 5 लाख रुपए तक का बीमा लोगों को करने को दिया है जो गरीब लोग हैं, और इससे वो मान करके चल रही है कि लगभग 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ये बहुत बड़ा कदम है, अखबारों में आप देखेंगे इसको ओबामा हेल्थ केयर के कंपेयर किया गया है, लेकिन ये अपने आप में अद्भुत है, ये बहुत बड़ा है, करना आसान नहीं है। अब देखते हैं कि सरकार इसको कितना कर पाती है। तो स्वास्थ्य के संबंध में सरकार ने जो स्टेप लिया है और एग्रीकल्चर के फील्ड में जो स्टेप लिया है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में आप थोड़ा सा रूरल डेवलपमेंट को भी जोड़ सकते हैं। तो ये तो मैं दोस्तों मैंने आपको टॉपिक की बात बताई, मैं ज्यादा आंकड़ों के जाल में अभी आपको नहीं फंसा रहा हूं, फंसाऊंगा भी नहीं, और सच बात है कि उसकी जरूरत भी नहीं है। आप लोग अपने अपने ढंग से जो भी शौक रखते हों, आपके पास अखबार है ही, आप उसे पढ़ लेंगे। अगर मैं उसे ही दोहरा देता हूं तो फिर मेरा डेली ऑडियो लेक्चर का आपके लिए कोई एडिशनल वैल्यू रह भी नहीं जाएगी, तो उसका कोई महत्व भी नहीं है। मित्रों, अब मैं जब आप अखबार पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके। हो सकता है कि आप जानते भी हो, मुझे नहीं मालूम है, फिर भी मैं कुछ चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए, यहां जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसका संबंध शेयर मार्केट से है, शेयरों की खरीदी और बिक्री से होने वाला लाभ। हालांकि जब हम कैपिटल गेन की बात करते हैं तो उसमें रियल एस्टेट भी आ जाता है, लेकिन उसे अभी आप किनारे कर दीजिए, है ना, हम उस डेफिनेशन में न फंसे। यहां जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कही गई है, इसका मतलब है कि आप देखते हैं कि लोग शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट में जो खरीदने और बेचने वाले हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर्स कहलाते हैं। व्यापार करते हैं। आज लिया, शाम तक बेच दिया, फायदा हुआ तो कल बेच दिया, एक सप्ताह में बेच दिया, इस तरह से उनके रोजमर्रे का काम होता है। तो ये व्यापार कर रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का मतलब है, यहां एक साल आप शेयर खरीदते हैं और उसे एक साल के लिए आप कम से कम रख देते हैं, एक साल के बाद फिर कभी बेचते हैं। तो उस एक साल के रखने के बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल, कैपिटल शेयर हो गया, गेन आपको कितना मिला, गेन मतलब प्राप्ति, उस पर आपको टैक्स लगेगा। तो यह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। आपने खबर और भी पढ़ी कि रेलवे के लिए 1,80,000 करोड़ या कुछ डेटा आप लोग चेक कर लीजिएगा पूंजीगत खर्च के लिए सरकार ने रखा है। ये पूंजीगत खर्च क्या है इसे थोड़ा सा समझ लीजिए मित्रों। खासकर दो तरह के सबसे इंपॉर्टेंट खर्च होते हैं, एक पूंजीगत खर्च है, दूसरा राजस्व खर्च है। देखिए जैसे मान लीजिए कि रेलवे है, तो रेलवे एक बिल्डिंग बना रहा है, रेलवे ट्रैक बना रहा है, रेलवे इंजन खरीद रहा है, डब्बे खरीद रहा है, तो ये क्या है, ये खरीद रहा है, इसके लिए पैसा लग रहा है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट है, ये रेलवे की संपत्ति का निर्माण करने वाला एक्शन है, इसे रेलवे की संपत्ति बन रही है। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं और उसमें आपने 5 करोड़ रुपए की मशीन मंगा ली, 5 करोड़ रुपए आपके पॉकेट से चले गए, लेकिन ये जो मशीन है ये तो आपकी पूंजी की तरह ही हुई ना, इसको 5 साल तक आप इसमें अर्जित करेंगे, इसके माध्यम से ये खर्च नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं हम पूंजीगत व्यय। जो राजस्व व्यय होता है वो ये होता है जो रिकरिंग होता है, जो लगातार चलते चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, ये हैं अधिकारी हैं, तो अब वो तो आपको हर साल सैलरी देनी ही, हर महीने सैलरी देनी ही देनी है, तो वो राजस्व व्यय कहलाता है। तो जो पूंजीगत व्यय है, याद रखिए कि पूंजीगत खर्च हिंदी में कह दिया जाता है, लेकिन वो फायदेमंद होता है, वो यह सोच कर खर्च किया जाता है कि इससे हम आगे चल करके लाभ अर्जित करेंगे। मित्रों आप अखबार में थोड़ा सा शायद आपको यह पढ़ने को मिले, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव जो टैक्स सिस्टम है, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है। और आप वित्त मंत्री जी को भी मैंने संवाददाता सम्मेलन में कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना है, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे बता देना चाहिए यहां। देखिए प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जो टैक्स, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स मतलब वो सीधे आपसे लिया जाएगा, और प्रोग्रेसिव का मतलब है कि वो बढ़ता चला जाता है, प्रोग्रेस करता चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं, तो 1,00,000 रुपए में मान लीजिए मुझे 1,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, तो जब मैं 5,00,000 कमाऊंगा तो पता लगा 5,00,000 में वैसे तो मुझे 5,000 देना चाहिए, लेकिन 5,00,000 कमाने पर मैं 7,00,000 टैक्स दे रहा हूं, तो बढ़ गया, टैक्स का रेशियो बन गया। पहले मैं 10% देता था टैक्स, और अब यहां आकर के पता लगा कि मेरे टैक्स की जो दर है वो 14% हो गई, फिर आगे चल करके और हो गई। तो आपने इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है, आप देखिए कि कहा जाता है 10% शुरुआत में, जो बेसिक शुरुआत में टैक्स 10% से होता है, और आगे जाकर के पता लगा कि वो 30% तक हो गया है, यानी कि जैसे जैसे कमाई बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स की दर भी बढ़ रही है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है सबके लिए बराबर, वो एक जैसा रहेगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब जैसे देखिए कि जो टैक्सेस लगते हैं, जो जीएसटी को ही कह लीजिए आप, जीएसटी हम देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि धनी आदमी से ज्यादा लिया जाएगा, गरीब आदमी से कम लिया जाएगा, वो सबसे एक जैसा लिया जा रहा है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इसी पैटर्न पर आप दे भी सकते हैं, इसी पैटर्न पर वसूल भी किया जा सकता है। तो मित्रों ये मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी भी आपको बताई है, और अब मैं इसको यहीं समाप्त करना चाहूंगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से 4 मित्रों के नाम हैं, सुवित जैन, राहुल कुमार समस्तीपुर बिहार से, कामिनी सिंह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, और प्राची सिंह चंदेल छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करते हुए 2 दिनों के लिए इजाजत चाहूंगा। सोमवार को फिर मुलाकात होगी और फिर नए नए विषयों पर बात करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, नमस्कार।